Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvediya Kaivalya Upanishad ka pahla mantra hai, Uchcharan. अधि भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भिः सेव्यमानाम् निगूढाम् यया चिरात सर्वं पापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्। आसुलायन महर्षि परमिष्ठी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाकर के प्रार्थना करते हैं कि अधीहि भगवन ब्रह्म विद्याम, आप हमें ब्रह्म विद्या को पढ़ाइए। ब्रह्म विद्या अध्ययन करने के लिए जिज्ञासा प्रकट कर रहे। हालांकि ब्रह्मा जी से बहुत कुछ विद्या अध्ययन कर सकते, पर सारी विद्याएं अनात्मा को प्रतिपादन करने वाली हैं। एक ब्रह्म विद्या ही ऐसी विद्या है जो आपके अपने आत्मा स्वरूप का प्रतिपादक है, और सारी विद्याएं अनात्मा को विषय करती हैं, और अनात्मा का स्वभाव है परिवर्तनशील, जड़, विनाशी, दृश्य, परिच्छिन्न, ये सब अनात्मा के लक्षण हैं। परंतु जो आत्मा है नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसी विद्या की यहां पर जिज्ञासा करते हैं। जो विद्या कैसी है तो वरिष्ठाम, वरिष्ठा मतलब सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, महान है। सदा सद्भिः सेव्यमानाम् निगूढाम्, क्योंकि नियम है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्र देवे तरो जनः, स्वयत् प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, जो उपदेश करते हैं, उसी के अनुसार सामान्य जनता अनुकरण करती है। ये नियम है आज भी, ये अनादि काल की परंपरा है, आज की नहीं, अनादि काल की। तो ये कैसी है तो कहे सद्भिः सेव्यमानम्, सज्जनों के द्वारा। मान लीजिए कोई चीज बहुत बड़ी हो, अच्छी हो, परंतु इसको सज्जन महापुरुष आदर नहीं करते हो तो वह चीज आदरणीय नहीं होती है। इसलिए कहा कि सज्जनों के द्वारा सेव्यमान या सेवित होने वाली है। यह कहां पर है तो कहा निगूढ़ाम, नीतराम गूढ़ाम निगूढ़ाम, गुह आवरण से गूढ़ा बनता है। ये विद्या अत्यंत गोपनीय है, इतना गोपनीय है जैसे कि आप सोना चांदी को या अमूल्य हीरा मोती रत्न को छिपा के रखते, बड़े आदर के साथ रखते, आप कहीं भी जाते आते पूरा ख्याल रहता। बाहर गांव को गए, किसी ने फोन कर दिया कि आपके घर में आग लग गई, या चोर आ गए, या नए आदमी आ गए, तो पूरे ध्यान आएगा, अरे फला जगह वो रखा हुआ है माल, कहीं वो गड़बड़ तो ना कर दे, कहीं चेक है चेक उठाए गड़बड़ तो ना कर दे। ईंट पत्थर के याद नहीं आएगा, पर जो अच्छा जो माल रखे छिपा कर उसका तुरंत ख्याल आएगा, तुरंत फोन करेंगे, जरा उस कमरा का बंद करके चाबी अपने पास रखना, होता है कि नहीं। ऐसे ये जो विद्या देखो निगूढ़ाम कहने का इतना ही तात्पर्य है, ये लाक्षणिक शब्द है। निगूढ़ाम शब्द है लाक्षणिक, इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो बहुत कीमती चीज होती है ना, उसको जैसे हम बड़े आदर हिफाजत से रखते हैं और बरबस स्मृति बनी रहती है। मतलब कि निगूढ़ाम शब्द का लक्षणा करना स्मृति में आत्यंतिक स्मृति बनी रहती है, हर हालत में उस बात की स्मृति रहती है। एक जगह हम लोग जा रहे थे बस में, तो कुछ ज्यादा उछल कूद बस में हुई, तो देखो एक्सीडेंट होने के बाद भी जो माल था ना, वो आदमी हाथ से छोड़ा नहीं। हम लोगों ने कहा देखो स्वयं तो खून खून हो गया, पर जो झोले में माल रखा ना उसको कस के, उस समय में उसको होश है, स्मृति है, किसमें खास माल है, किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। शरीर बेचारा बुरी तरह घायल हो गया, शरीर से रक्त बह रहे, चिल्ला रहा, आंख बंद, फिर भी वो झोला कुछ लोग छुड़ा रहे थे, देखा वो छोड़ नहीं रहा, क्योंकि अंतर हृदय में एक स्मृति बनी है, किसको नहीं छोड़ना है। तो ऐसे ही यह जो ब्रह्म विद्या ऐसी रहस्यात्मक है, गोपनीय अमूल्य रत्न है कि हमेशा इसकी स्मृति बना के रखनी चाहिए। इस अर्थ में निगूढ़ का प्रयोग किया, मतलब आत्यंतिक स्मृति में प्रयोग किया। वैसे भी संतों के, विद्वानों के, ऋषियों के वचन कहते ना बड़े लाक्षणिक होते, निगूढ़ होते। एक सज्जन अपने पुत्र को महात्मा जी के पास ले गए, बोले महाराज ये दही बहुत खाता है, चावल खाता, उड़द खाता, केला खाता, इसको बड़े जुखाम, खांसी, सर्दी, फिर भी नहीं मानता, और रात को तो जरूरी खाता, आप ऐसा उपदेश करो कि दही खाना छोड़ दे। महात्मा जी ने कहा अच्छी बात। बोले देखो बेटा, दही खाने से तीन फायदा है। वो पिताजी की तरफ देखा, ये तो खाने के लिए कह रहे। बोले पहला फायदा है कि बुढ़ापा नहीं आएगी, बड़ा खुश हो गया। दूसरा फायदा है कि घर में चोर नहीं आएंगे, और तीसरा फायदा जबरन राम राम हरिओम की आवाज आएगी, दही खूब खाना। अब वह खुश हो गया पिताजी को देखकर कि आप कहते दही नहीं खाना चाहिए, और महात्मा ही तो कह रहे दही खाना चाहिए, बुढ़ापा आती ही नहीं। घर आए, अब घर जो है कहा गुरु जी ने भी कह दिया है दही खूब खाना, बुढ़ापा नहीं आएगी, और घर में चोर नहीं आएंगे, हरिओम हरिओम की आवाज आती रहेगी। पिताजी ने कहा जरा जाकर पूछ के आओ इसका रहस्य क्या। गया, बोला कि पिताजी ने भेजा है कि आपने जो कहा दही खाना, उसका रहस्य क्या। महात्मा जी ने कहा देखो दही तुम खाओगे तो जवानी में मर जाओगे, तो बुढ़ापा कहां से आए। अब तो घबराया, अरे मैं तो सोच रहा था दही खाने से जवान रहूंगा, तो नहीं, दही खूब रात को खाओगे ना जल्दी से ऊपर चले जाओगे बुढ़ापा के पहले। अच्छा, बोला चोर नहीं आएंगे मतलब खांसी जुकाम होगा तो रात भर खो खो करते रहेंगे, चोर कहां से आएगा, चोर नहीं आ पाएगा। तीसरी बात की हरिओम हरिओम करना ही पड़ेगा, जब खांसी होगी, तकलीफ होगा, बुखार होगा, तो जबर राम राम हरिओम महादेव नाम आएंगे। बोला ओ ये तो रहस्यात्मक बात, ये निगूढ़ बात है, छिपी हुई बात है ना। ऐसे यहां पर बोले ब्रह्म विद्या बड़ी निगूढ़ है, छिपी हुई बात है, हर किसी को समझ में नहीं आती। जब सज्जन लोग उपदेश करते तभी समझ में आती है। सेव्यमानम का अर्थ है कि हमेशा अपने जीवन का अंग बना लेना। यया अचिरात सर्वम पापम विपोह, यजा पाठ है, यथा आप लोगों में है, यथा पाठ से ना वो जो है ना संगति नहीं लग पाएगी, सुधार लेना, यया होगा। क्योंकि यथा वहां प्रयोग होता है जहां पर दृष्टांत देना होता है, यहां दृष्टांत नहीं है, यहां करण अर्थ में, द्वारा अर्थ में है, मतलब जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस अर्थ में है। तो यया बना लेना, यथा है ना, वो जो है ना उत्तर वाले य का मुख सट गया होगा, स्पर्श होने से वो जो है लग रहा होगा थकार जैसा, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यजाकार से जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा अचिरात मतलब शीघ्र बहुत जल्दी सर्वम पापम व्यपोय, सारे पाप छीण हो जाते हैं। सभी यही चाहते हैं ना कि हमारे जीवन का सारा पाप नष्ट हो जाए। पाप का फल है दुख। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। शास्त्र कहता है कि मनुष्य को ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब हमारे पापीय कर्म क्षीण हो जाते हैं। और आगे क्या कह रहे, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। इस उपदेश के सुनने के बाद में जरा भयभीत हो जाता है। जब आप पहला सुनते हैं कि पाप कर्म आत्मज्ञान से छीण हो जाता है तो खुश, जब आगे सुनते हैं कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्पों में भी जब तक पाप कर्म का भोग नहीं कर लेंगे छीण नहीं होगा, तो आदमी निराश हो जाता है। ये कथा एक राजा सुन रहे थे। राजा जरा नास्तिक थे। राजा ने कहा देखो राज कार्य छोड़ करके समय निकाल करके और बंबई में प्रेमपुरी में दो दो घंटे माथा पच्ची करते, और महाराज बोले कि बिना भोग किए पाप छीण नहीं होगा, तो क्या है सत्संग सुनने से, संत दर्शन से, आशीर्वाद से भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उनको रहा नहीं गया। महाराज से पूछ लिए, महाराज हमने तो यह सुना था कि संतों के दर्शन से, आशीर्वाद से, सत्संग से, स्वाध्याय से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आप कहने कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, तो फायदा क्या हुआ हमारे को सत्संग में बैठने का, आने का क्या फायदा हुआ? महात्मा जी ने कहा अच्छी बात है, कल बताएंगे तुमको, कल सुबह आना। जैसे ही रात को राजा सोए, इसी उधेड़ बुन में थे कि जब सत्संग स्वाध्याय संत दर्शन से पाप छीण नहीं होता है, अपने को भोगना ही है, तो फिर आखिर में फिजूल में समय क्यों बिताए। रात को राजा ने सपना देखा। क्या सपना देखे? बड़ा खतरनाक। राजा ने देखा कि मैं चांडाल बन गया, चांडाली से ब्याह हो गया और 8-10 बच्चे हो गए। अब बेचारे बहुत परेशान, दिन भर खाने पीने की व्यवस्था में लगे रहते, शाम को बड़े मुश्किल से सोते, वो जीवन से बहुत उब गए, परेशान हो गए, कितना कंटाल गए, ये सोचे कि इससे बढ़िया आत्महत्या कर लो। इधर जो है उस चांडाल रूप में जो राजा सपना देखे, क्या देख रहे हैं, इधर नदी में डूबने जाते तो उनकी पत्नी पीछे पीछे आई, बोले कि तुम्हें आत्महत्या करना था, इतना ये पसारा क्यों किया, पुत्र पौत्र क्यों किया, पालन करो नहीं तो केस कर दूंगी, जेल में बंद। अब उसने कहा हाँ, ये मरने भी नहीं दे रही, जीने भी नहीं दे रही। अंत में उन्होंने क्या किया, जहर खाकर मर गए। अब मरने के बाद जैसे जहर खाए तकलीफ हुई, घुटन हुआ, आंख खोल गई, देख रहे मैं तो सोया हूं बिस्तर पर, ये क्या है। प्रातः काल हुआ, महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी ने कहा कि तुमने पूछा था ना कि सत्संग स्वाध्याय का क्या फल, आज तुम्हें बताऊंगा। राजा को और कुछ लोगों को लेकर जंगल गए। महात्मा जी ने कहा देखो जंगल में जिसके सामने शिकार आए वही पीछा करेगा। जब जंगल में गए तो राजा के सामने हिरण आया तो राजा हिरण का पीछा किए, पीछे पीछे महात्मा जी भी घोड़े से चलते रहे। एकांत में पहुंच गए राजा, वहीं पहुंचे जो रात को सपना देखे थे। जब वहां पहुंचे तो बस वही सपने की चांडाली पत्नी दिखाई दी, वो बच्चे कच्चे पोते परपोते सब पहचान लिए। सबने कहा तीन दिन पहले बाबा आप मर गए थे फिर आ गए, बड़ी परमात्मा कृपा। अब उनके नाती पोते पैर पकड़ के रोने लगे। राजा ने कहा भाई मैं राजा हूं, मैं चांडाल नहीं। बोले अभी तो तीन दिन पहले आप मर गए, भगवान की बड़ी कृपा, हमने बड़ी उपासना की देवी से कि हे देवी काली मैया इनको जिला दो। अब राजा ने कहा कि ये सब बच्चे तो हमारे दिख रहे जो सपने में देखा था, वही ये पोते हैं पर पोते हैं, पत्नी भी वही है, घर भी वही दिख रहा। अब अपने को देख रहे तो मैं राजा, सोच में पड़ गए। इतने महात्मा जी पहुंच गए, बोले राजन तुम क्या सोच रहे। बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा कि मैं राजा था कि चांडा। अब उसको समझाए चांडाली को, देख भगवान की दुनिया में एक सरीखे दूसरे भी हो जाते हैं, ये तो फला देश का राजा है तुम्हारा पति नहीं। जब समझाए कि एक तरह के दो आदमी हो जाया करते तो शांत हुए किसी तरह। महात्मा जी ने कहा कि देखा तेरे माथे पर लकीर थी कि तू अगले जन्म में चांडाल बनता, परंतु सत्संग स्वाध्याय से 100 वर्ष का कर्म फल एक रात में कट गया। अब तू ही बता ये सब है कि नहीं तेरे पुत्र पौत्र। फिर वहां ले गए जहां गाड़ा था खोदा तो वही चांडाल के शरीर मिट्टी में दफनाया। तो महात्मा ने राजा को कहा कि तेरे सत्संग स्वाध्याय से सन दर्शन से 100 वर्ष में जिन कर्मों का भोग होना था चांडाल योनि में वह कट गया। तो ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सदै रपि का तात्पर्य है कि मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त न हो, भय दिखलाकर हटाने में है। इसको बोलते हैं इतर व्यावृत्ति, इसका नाम परिसंख्या लक्षण है, ताकि उधर इसकी मनोवृत्ति न जाए। तो देखो नारायण ये जो आत्मज्ञान है तभी प्रकट होता है जब हमारे पाप कर्म छीन हो जाते हैं। तो यहां वही बता रहे अचिरात सर्वम पापम व्यपोय, सारे पाप चीर बोलते हैं विलंब, अचीर मतलब शीघ्र बहुत ही जल्दी सारे पापों को, व्यपोय मतलब कि नष्ट करके। परात परम पुरुषम याति विद्वान, परात्पर पुरुष को विद्वान उपलब्ध हो जाता है। पुरुष का मतलब है पुरिषु से तेति पुरुषा, ये जो नौ द्वार वाली नगरी है, नौ द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् नकारयन्, आराम से आत्मा नौ दरवाजे वाले पूर्व में शयन कर रहा, उस पुरुष को उपलब्ध होता। अभी हम लोग जागृत काल में संसार के पदार्थों को उपलब्ध कर रहे हैं, परंतु जब चित्त शुद्ध होगा तो अंतर जगत में प्रवेश करेंगे। सपने में हम लोग मन के जगत में प्रवेश करते हैं, और जब साधना उत्कृष्ट होती है तो अंतर जगत का दर्शन होता, और अत्यंत शुद्ध होने के बाद जो अंतर राज्य में जिसको उपनिषद में स्वराज्य कहा कि स्वराज्य अभिषिक्तो भवति, ये आपका स्वराज्य नहीं है, यह जो है ना यमराज का मर्त लोक है। तो मर्त लोक में ये जीव मौत की क्रीड़ा है, खेल। ये काल हमेशा, काल क्रीडति नित्यम, काल हमेशा मनुष्यों को खिलौना बनाकर खेलना, जैसे गोटी खेलते हैं ना एक दूसरे से, ऐसे काल भगवान क्रीड़ा कर रहे। तो आपका जो राज्य है ना, आत्मराज्य है, स्वराज्य है, उस स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। दूसरे के देश में, दूसरे के राज्य में गए, वहां पर जाने के बाद वहां के कायदा कानून संविधान मानना ही पड़ता है, बिना माने काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि एक आदमी भटकते भटकते दूसरे राज्य में चला गया, उस राज्य में गया, संयोग से उस राज्य के राजा का शरीर छूट गया था और उस राज्य का संविधान था कि राजा का शरीर छोड़ दे तो हाथी के शूल में माला देते और जिस आदमी गले में पहना दे उसको राजा मान लेते। संयोग से विदेशी आदमी पहुंचा, वो हाथी जो है ना उसी गले माला डाल दिया। अब तो सभी लोग जबरन इसको राजा बना दिए। इसने कहा, भाई मैं दूसरे राज्य का आदमी हूं, हमको कुछ पता नहीं राजनीति संविधान तुम्हारा। बोले सो तो हम सब सिखा देंगे। जबरन राजा बनाया, उसका विवाह हो गया, बहुत उसके संतति हुई, बच्चे कच्चे सब हो गए।